एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। मनुख की बरतर परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग दी कीती है। इस दी दुनिया कुछ बाहर पई है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दी अंदर दी पवन दा बाहर दी पवन नाल संबंध जुड़िया होया, शरीर दे अंदर पए हुए पानी दा बाहर दे पानी नाल संबंध है। शरीर दी मिट्टी दा बाहर दी मिट्टी नाल जुड़िया होया संबंध है। असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। एक श्वास असी बाहर कढ़दे हाँ, एक अंदर लै लैंदे हाँ। जे सिर्फ अंदर लईए ते कहीए बाहर नहीं कढ़ना, तां वी असी नहीं रह सकांगे। और जे बाहर ही श्वास कढ़ दईए ते फिर अंदर ना लै जाइए, तां वी जीवना औखा होवेगा। इत्थों ही अध्यात्मवादियां ने यह तत् कढ़िया है कि असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। साड़ी दुनिया कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। कुछ बाहर दी दौलत है, कुछ अंदर दी दौलत है। कुछ बाहर दा कुटुंब परिवार है, कुछ अंदर दा कुटुंब परिवार है। बाहर दा जो कुटुंब परिवार है साडा, उस दी ते सूझ बूझ सानू पूर्ण रूप दे च है। पर अंदर दा साडा की परिवार है, इस दी जानकारी गुरु नानक देव जी महाराज करांदे ने। दूसरी उदासी दा भ्रमण करके जद आप तीसरी उदासी दी पूर्ण रूप दे तैयारी करन लगे, तां आप दी माता जगत माता तृप्ता जी ने आप नू प्रेरिया कि हुण तुसी कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, थोड़े बच्चे हैगे, थोड़ी पत्नी भी हैगी है, और परिवार विच रहना भी थोड़ा धर्म है, मुख धर्म है। तां उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उचारण कीते ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बकायदा दर्ज ने, आपने फरमान कीता, माता मैं जिधर भी जाना अपना परिवार नाल लैके जाना, और मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं। परिवार मेरे नाल होंदा जिस पासे भी मैं जावां। तृप्ता जी हैरान हो गई कि परिवार नाल जांदा, असी सारे इत्थे ही आंदे, कोई नाल गया नहीं। मरदाने ते बाले तो बिना परिवार दा कोई फर्द नाल नहीं, पर नानक जी कह रहे ने परिवार मेरे नाल है, और मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल जांदा है। ये ते सुदाइयां वाली गल होई। अक्सर संसार दी दृष्टि दे च भगत लोग महापुरुष पागल ही कहलाए गए, उन्हां नूं पागल ही आख्या गया। कारण उन्हां दी विचार उन्हां दे बोल समाज दा हिस्सा नहीं बनदे सन, व्यवहार दा हिस्सा नहीं बनदे सन। रोज़मर्रा दी जिंदगी दे च उन्हां दे विचारां नूं, उन्हां दे व्यवहार नूं, उन्हां दे बचनां नूं ढालना बड़ी औखी गल हो गई। जिस तरह पागल दे बोल संसार नाल तालमेल नहीं खांदे, समाज दा हिस्सा नहीं बनदे, भगतां दे बोल भी समाज दा हिस्सा नहीं बनदे। इस वास्ते जिथे पागल समाज नालों टुट जांदा है, करीबन करीबन भगत भी समाज नालों टुट जाते हैं। अज तक का इतिहास यही कहता है। और गुरु नानक की बाणी ने तो साफ फैसला कुन गल कह दिती है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगत ते संसारी का जोड़ कदी जुड़िया ही नहीं, मेल कदी होया ही नहीं। जद गुरु नानक देव जी महाराज ने यह आख्या कि परिवार मेरे नाल जांदा है, और मैं जिधर जाना परिवार अंग संग है, तो तृप्ता जी हस पईआं, आखण लगे नानक जी तुसीं वाकई सुदाइयां दी तरह गल करन लगे। जगत ते सुदाई कहिंदा ही सी बई तू सुदाई है, अज मैनू भी कहना पएगा ये बोल सुदाइयां वाले ने, पागलां वाले ने। परिवार ते सारा इत्थे ही हुंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, मां ये ते सोचण सोचण दी गल है ना, ये ते मनुख दे मनण मनण दी गल है। मैं जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा, मैं जिधर जाना मेरा परिवार मेरे नाल जांदा। तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जांदा है उहदे च मां है, पिता है, साहब कहन लगे हाँ जिहड़ा परिवार मेरे नाल जांदा है उहदे च मां भी है। तो हुण ते हैरान होईआं ते खिड़खिड़ा के हस भी पईआं। पुत्तर तू वाकई सुदाइयां वाली गल करदा है, वाकई पगलियां वाली गल करदा है, मैं ते कदी नाल नहीं गई, मैं ते इत्थे तलवंडी दे च ही रही हाँ, पर तू कहना मेरे नाल है मां। फिर सोची पै के कहिंदियां ने किधरे ऐसा ते नहीं तू मेरी याद नाल लै जाना है, ते यही आखना चाहता होवें ते मैं समझदी ना होव। साहब कहन लगे हाँ कहना ते कुछ मैं ऐसा चाहना मां अजे भी तू नहीं समझी। कहिंदे ने भगतां तो ब्रह्म ज्ञानियां तो चार तरह के जड़े मनुख ने वो कोई लाभ नहीं उठाते। एक ते मां बाप, दूसरे शरीक, तीसरे जिगरी दोस्त और चौथे दुश्मन, ये कोई लाभ नहीं उठाते। ये उन्हां दी गल नूं समझना भी नहीं चाहते और उन्हां तो लाभ भी नहीं उठाना चाहते। तो ममता दी मारी हुई तृप्ता ममता दी दृष्टि नाल गुरु नानक नूं वेखदी है और गुरु नानक इस दुनिया तो बहुत उच्चे अगां दी गल कर रहे हैं। मां मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल आउंदा, क्या उस परिवार विच मां भी है? हाँ मां भी है। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया नानक जी दसो उस मां दा नां की है जो नाल जांदी है। तो सतगुर माता दा नाम दस दिन, परिवार दे सारे फरदां दा नाम दस दिन और ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर गौड़ी राग विच दूसरे नंबर ते आया है। सतगुर कहिंदे ने माता मत पिता संतोख है, सत भाई कर एह विशेख। मेरी जो माता है वह शुभ मत है, चंगी मत है, ये कदम कदम ते मेरी रखिया करती है, मेरी हिफाजत करती है। असी उसनू यतीम कहते हैं जिस दी माँ मर जाए, पर गुरु नानक कहते नहीं उसनू यतीम ना आखो जिस दी माँ मर जाती है, यतीम उसनू आखो जिस दी मत मर जाती है। जिस दी मां मर जाए वह जिंदा रहने दे वसीले लभ लैंदा है, ठोकरां तो कई दफा बच भी सकता है, पर जिस दी मत मर जाए वह तो कदम कदम ते ठोकरां खांदा है। बुद्धिहीन मनुख कदम कदम ते ठोकरां खांदे ने। तो साहिब कहिंदे ने कि चंगी मत, श्रेष्ठ मत, उत्तम विचार, उत्तम फिलसफा, प्रभु चिंतन, ये जिहड़ी चंगी मत है ये मेरी मां है और मेरे नाल है और हर कदम ते मेरी हिफाजत कर दी है, मेरी पालना कर दी है, मेरे ते ममता डुलांदी। तो ठीक है चंगी मत ये मां होई, पिता कौन है? संसार दे जितना सारा अनर्थ चल रहा है ये मत दे मरण नाल चलता है। जब मत मर जाए तो मनुख गुंडा हो जाता है, बदमाश हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, चोर बन जाता है। दुनिया दे जिस जिस दी भी मत मर गई है उन्हां मनुखां दे कारण बड़ा अनर्थ है, जिन्हां दी मां मर गई है उन्हां दे कारण करके संसार नूं कोई हानि नहीं है, बल्कि उह ते विचारे दया दे पात्र ने। पर जिन्हां दी मत मर गई है वह ऐसे यतीम ने, कई दफा उह समुची मनुखता नूं यतीम बनाउण दे च भागी बन जांदे ने। तो माता मत पिता संतोख, साहिब कहिंदे ने मेरे पिता दा नां है संतोख, ये हर हालत विच मैनू खुश रखता है। लोभ ते संतोख की व्याख्या दो लफ्जां विच करनी होवे तां इतनी है जो कुछ है जैसा है सब ठीक है, ये संतोखी की भाव दशा होंदी है। जो कुछ है जैसा है प्रवान है कबूल है। लोभी की मानसिक दशा की है जो कुछ है जैसा है कबूल नहीं, जैसा परिवार है, जैसा संसार है, जैसे माँ बाप ने, जैसी धन संपदा है, जैसी मेरी प्रलब्ध है, ये प्रवान नहीं, ये कबूल नहीं। ते जद कबूल नहीं तो दुखी होवेगा, बेचैन होवेगा। आम कहावत है कि लोभी बंदा फुलां दी सेज ते भी तड़पदा है, संतोखी बंदा अंगारियां ते बैठ के भी मस्त रहिंदा है। और इस दे सबूत मिले ने गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुराए ने, प्रभु दे गीत गाए ने। संतोखी मनुख हर हालत विच आनंद विच होवेगा और लोभी मनुख हर हालत विच पीड़ित होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। साहिब कहिंदे मेरे पिता का नाम है संतोख। एक गाथा चेते आई है, फातेह आजम सिकंदर कहिंदे ने जद हिंदुस्तान नूं फतेह करन वास्ते आया लंबी चौड़ी सेना लैके, तां जिस वक्त दरिया सिंध अबूर करन लगा, सिंध दे तट दे उत्ते एक अजीब मस्त फकीर लेटिया होया सी रेत दे च। सेना सारी दरिया पार कर चुकी सी, आखरी टुकड़ी दे च सिकंदर आप सी। उस मस्त फकीर नूं वेख के रुक गया। बचपन तो ही सिकंदर फकीरां दा मुश्ताक रहा। नेड़े चला गया, रेत दे च लेटिया होया ए महात्मा वेखदा है सिकंदर नूं, पुछ बैठा, सिकंदर कित्थे चलिया, किहड़े पासे गमन कीता। सिकंदर कहण लगा फकीर साईं मैं हिंदुस्तान फतेह करन चला लंबी चौड़ी सेना लैके। तां फकीर कहण लगा ठीक है, ए दस जद तू हिंदुस्तान फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। आखण लगा फिर मैं हथ दे उत्ते हथ धर के थोड़ी बैठना, मैं कोई होर मुलक फतेह करांगा। फकीर कहण लगा जे तू होर मुलक भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। कहिंदे ने जितने चिर तक सही जवाब ना मिले सवाल अपनी थां ते खड़ा रहिंदा, समाधान सही ना होवे तो समस्या अपनी थां ते खड़ी रहिंदी। सिकंदर हैरान होया, सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, मैं जो भी जवाब देना उहदे नाल सवाल मिटदा नहीं इस फकीर दा। तो उस फकीर ने कहा जे कल्पत कीता होया तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। तां सिकंदर कहण लगा फिर मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा, मैं बैठे नहीं रहना, मैं सुस्त आदमी नहीं हाँ, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहण लगा ठीक है पर सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, जे तू होर मुल्क भी फतेह कीता फिर की करेंगा। गुस्से च आके सिकंदर कहण लगा मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, जमीन दा एक इंच खिता भी नहीं रहण देंगा जो मेरे कब्जे दे च ना होवे, जो मेरी पकड़ दे च ना होवे, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। सिकंदर सोचदा हुण सवाल खत्म, पर नहीं फकीर फिर बोलिया, अच्छा सिकंदर ये दस जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। ये ते खाबो ख्याल दे च भी नहीं सोचिया सी सिकंदर ने कि इस तों अगां भी कोई जवाब देना पेगा। सिकंदर जब तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। तो फिर सिकंदर कहण लगा फिर मैं अपने घर जावांगा, आराम करांगा, यूनान वापस जावांगा, आराम करांगा। फकीर कहण लगा तू 100 पुआड़े पा के आराम करेंगा, ते असी आराम कर रहे हैं, असी रेत दिच लेटे हैं, असी आराम कर दे पाया, जे तू आराम करना ते आ इत्थे लेट जा, असी आराम देचा, तू 100 पुआड़े पा के आराम करेगा ते असी आराम देचा, इत्थे तू स्वयं अंदाजा लगा तू अगे है कि असी अगे हाँ। इतिहास गवाह है हिंदुस्तान तो वापस जांदे होया सिकंदर रस्ते दे च ही दम तोड़ गया, उन्हूं आराम नसीब ना होया। मनुख दी कई दफा सारी भज दौड़ आराम वास्ते आउंदी है, ते आराम उसे दिन नसीब आउंदा है जद चार मनुख चुक के चिता ते रख दें दिन, इस तो पहले आराम किते। भज दौड़ है आराम वास्ते, पर भज दौड़ मनुख दे कोल रह जांदी है, आराम नहीं रह जांदा। पर जे मन दे संतोख होवे ते ऐसा मनुख हर वक्त विश्राम विच है, ऐसा मनुख हर वक्त आराम विच है, उदी भज दौड़ दे च भी कुछ विश्राम होवेगा। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान संतोख मेरा पिता है, मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम दे च रखदा, आराम देंदा, सुकून देंदा। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एह विसेख। तो तृप्ता जी ने पूछया नानक जी ये ते गल समझ दे च आ गई कि जो मत है श्रेष्ठ मत है ये थोड़ी माँ है, जो संतोख है ये थोड़ा पिता है। पर परिवार दे च सिर्फ माँ बाप ते नहीं होंदे, पत्नी भी होंदी है, ਅਸੀਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸਸੁਰ ਭਏ, ਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਕਰਮਨ ਲੈ, ਕਰਣੀ ਭਗਤੀ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਆਚਰਨ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਾ ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸਸੁਰ ਭਏ। ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ, ਸੁਰਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਾਓ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਰੂਪੀ ਸੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ, ਜਿੱਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਤਿੱਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਣੀ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤਰਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਅਰਧ ਅੰਗ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੁਰਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਤਾਦਾਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਅੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਹੋਵਣ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਰਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮਤ ਮਤ ਵਿਚਾਰ ਉਜਵਲ ਮਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸਸੁਰ ਭਏ, ਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਕਰਮਣ ਲੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਭੁੰਚ, ਧਿਆਵਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਨ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਕਤੇ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਵੈਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਧਨ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਵੈਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਦਾ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, और दिन ब दिन धर्म घटता जा रहा है। इत्थे धर्म जो है प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकता और पुत्र भी पिता नूं नहीं दे सकता। धन ऐसा है कि पुत्र ने कमाया वह पिता की झोली च पा सकता है और पिता ने कमाया वह पुत्र के हत्थां च दे सकता है, पर धर्म स्वयं कमाना पैंदा है। प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकता, पुत्र पिता नूं नहीं दे सकता। इसका इतिहासक सबूत है। गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश से कि मेरा जिहड़ा वड्डा पुत्र है पृथ्वी चंद ये भी नाम का रसिया बने, ये भी बाणी पढ़े, ये भी परमात्मा नाल जुड़े, पर नहीं, वह झगड़ता ही रहा, वह नास्तिक ही रहा, वह कलेश पाता रहा। वो संबंध च महाराज के बोल भी ने, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों जगरत पाप। वो लड़दा ही रहा, झगड़ता रहा, इच्छा ख्वाहिश होने के बावजूद भी गुरु रामदास जी महाराज की पृथ्वी चंद भगत ना बन सकया, संत ना बन सकया, धर्मी ना बन सकया। इत्थे पिता पुत्र की झोली च नहीं पा सकया। दूसरे पासे असी देखते हाँ प्रहलाद की बड़ी कोशिश से कि जिहड़ा राम का रस मेरे कोल है, जो धर्म मेरे कोल है, वह मेरे बापू कोल भी होवे, वह मेरे पिता कोल भी होवे, पर नहीं, हरनाकश इस दौलत तो वांझा ही रह गया। जो नाम की दौलत प्रहलाद कोल सी, वह हरनाकश कोल नहीं सी। चाहते सन प्रहलाद कि मेरे बापू कोल भी होवे, पर गल नहीं बनी। चाहते सन गुरु रामदास जी महाराज मेरे पुत्र कोल भी होवे, पर गल ना बनी। इत्थे एक दूजे नूं ये दौलत दित्ती नहीं जा सकती, स्वयं कमाणी पैंदी है, आप कमाणी पैंदी है। मनुख उसे दिन पूर्ण बनता है, धार्मिक तौर पर उसे दिन धनवान बनता है, जिस दिन इस दे कुल ज्ञान भी होवे और श्रद्धा भी होवे, अंदरों पूर्ण हो जाता है। तो साहिब कहिंदे ने, मेहनत मुशक्कत ये मेरा सहुरा है, सुरत मेरी सस है, इन्हां दे संजोग तो एक लड़की का जन्म होया जिसका नाँ है भगती। साहब कहिंदे ने, वो मेरी कामण है, करणी कामण है, कर मन लै। तां तृप्ता जी बोल उठे, नानक जी सुलखणी दे नाल व्याह असी कराया सी, भगती रूपी कामण नाल व्याह किसने कराया और कदों होया? गुरु नानक इस दे संबंध विच भी दसदे ने। साहब कहिंदे ने, साहा संजोग व्याह विंजोग, सतपुरशां दा जो संजोग होया, जो सतसंग नसीब होए, ये मेरी मंगनी होई सी। सतपुरशां दी सोहबत च मैं बैठा तां भगती नाल रिश्ता जुड़िया, सतसंग दा संजोग मेरी मंगनी होई सी। ते जद विकारां दा वियोग हो गया, दुराचार निकल गए, दुष्कर्म ढह गए, तां मेरा व्याह हो गया, ये मेरा व्याह होया। दुष्कर्म दे खत्म होंदिया, गलत विचारां दे खत्म होंदिया, गलत कर्म दे मिटदिया ही भगती प्रगट हो गई, भगती मैनू मिल गई। साहा संजोग व्याह विजोग, सतपुरशां दे संजोग नाल रिश्ता जुड़िया सी। गुलिस्तान दे चिक बोल बड़ा कीमती है, ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी दी ए महान रचना है गुलिस्तान। कहिंदे ने, वो एक दिन बैठे सन, हाथ धो रहे सन मिट्टी दे नाल, कोल बैठे उन्हां दे शागिर्द वो पुछदे ने, उस्ताद जी थोड़े चेहरे ते हर वक्त मस्ती रहिंदी है, रौनक रहिंदी है, तुसीं खुश रहिंदे हो, आनंद दे च रहिंदे हो, जदके अठे पैर अपने आप नूं खुश रखना बड़ी औखी गल है, पर तुसीं अठे पैर खुश रहिंदे हो, अठे पैर प्रसन्न रहिंदे हो, अठे पैर खेड़े ते मस्ती दे च रहिंदे हो, आखिर थोड़े कोल ऐसी की चीज़ है, सानू भी ये राज दसो। तो कहिंदे ने, जो मिट्टी हत्थां दे सी शेख सादी दे, उस मिट्टी नूं आप सूंघण लगता है, काफ़ी देर तक सूंघते रहे। शागिर्द कहिंदे रहे, उस्ताद जी सानू दसो कि थोड़े कोल इतनी प्रसन्नता किस तरह है, इतना खेड़ा किस तरह है। शेख सादी कहण लगे, थोड़ा सवाल मैं मिट्टी ते कीता है, मिट्टी बोलेगी मैं दसांगा। हैरान ने विद्यार्थी, पर बड़ी सुंदर नज़म दे राही विद्यार्थियों नूं समझाया है ईरान देश प्रसिद्ध संत शेख सादी ने। गिले खुशबू दर हुमाम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। कहिंदा है कि एक दिन घरवाली दे हत्थों मैनू खुशबूदार मिट्टी हाथ धोण वास्ते प्राप्त होई। गुफ्तम तू मुश्की अंबर یا امیری کہ از خوشبو دلاں وی زیت و مستم۔ شیخ سعدی صاحب کہنے میں بولیا اس مٹی نو، آکھیا دس تو مشکی ہیں، امبر ہیں، امبیری ہیں، آیا کیڑا سینٹ ہیں، کیڑا عطر ہیں تو، کیونکہ تیری سگندی نے میرے دل دماغ نو معطر کر دیتا ہے، ایں تے تو مٹی۔ مشکی، امبر، امبیری، غزنی، کابل دیچ جو عطر ورتے جاندے نے انہاں دے نام نے پراچین سمیت۔ گفتم تو مشکی، امبر یا امبیری کہ از خوشبو دلاں وی زیت و مستم۔ دستے صحیح تو مشکی ہیں، امبر ہیں، امبیری ہیں، کون ہیں، کیونکہ تیری سگندی نے میرے دل دماغ نو معطر کر دیتا۔ شیخ سعدی لکھ دین، مٹی بولی باؤ گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم۔ مٹی بولی اے شیخ، اے فقیر سائیں، میں ایک ناچیز مٹی ہاں، باؤ گفتا من گلے ناچیز بودم، گلے مٹی، میں ایک ناچیز مٹی ہاں، ولیکن مدت باگل نشستم، پر میں ایک خاص سمے تک پھلاں دے کول رہی ہوں، پھلاں دی جڑاں دے وچ رہی ہوں، پھلاں دی سنگت کیتی ہے، جمالے ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ پھلاں دی سنگت کر کے، پھلاں دی نیڑ کر کے میرے وچ بھی سگندی آ گئی ہے، مہک آ گئی ہے، ورنہ میں تے ایک ناچیز مٹی ہاں۔ تو شیخ سعدی صاحب کہن لگے میں ایک ناچیز مٹی دا پتلا، ست پرشاں دی صحبت کر کے اے گناں دی سگندی میرے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ جو مہک ہے یہ میری اپنی نہیں کسے تو ملی ہے، یہ جو چمک دمک میرے کول ہے یہ میری اپنی نہیں مینوں کسے تو ملی ہے۔ تو صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان، ست پرشاں دی جو صحبت نصیب ہوئی یہ میری منگنی ہوئی، اور سنسارک وکاراں دا جو تیاگ ہو گیا یہ میرا ویاہ ہویا۔ تو ترپتا جی نے پوچھ لیا، پتر نانک، اس بھگتی روپی کامن نے کسی سنتت نو بھی جنم دیتا ہے؟ تھوڑی کوئی اولاد بھی ہے، تھوڑا کوئی بچہ بھی ہے؟ کیونکہ پروار بچے تو بنا بھی تے ادھورا ہے۔ صاحب کہنے ہاں، سچ سنتت کہو نانک جوگ، اس بھگتی روپی کامن نے سچ روپی پتر نو جنم دیتا ہے، گیان روپی پتر نو جنم دیتا ہے، ایشور نو جنم دیتا ہے۔ حیران ہو گئے کہ ایشور دے نام بھگت لوگ رکھتے ہیں، ہوں ماں باپ بچیاں دے نام رکھتے ہیں پر بھگت رب دے نام رکھتے ہیں جو جگت پتا، یہ گل الٹی ہے۔ ماں باپ بچیاں نو جنم دے دین، بھگت رب نو جنم دے دین۔ سادھو ستم جانو نانک پریت کارنے، گرو ارجن دیو جی مہاراج دا کہنا، اگر سادھو تے بھگت نہ ہون تو ایشور دی ہون دا کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ ہی پرگٹ کرتے ہیں، اس دی ہوند نو، اس دی اصلیت نو، اس دی واسطوکتا نو جگت دے سامنے رکھدے ہیں۔ تو سچ روپی پتر نو جنم دیتا ہے، گیان روپی پتر نو جنم دیتا ہے، کہو نانک جوگ، میں اسے ہی پروار جوگا۔ مختصر اس پروار دی تفصیل، گرو نانک دا کہنا ہے جتھے ستسنگ ہوے گا اتھے چنگی مت ہوے گی، جتھے چنگی مت ہوے گی اتھے سنتوکھ ہوے گا، جتھے سنتوکھ ہوے گا اتھے اپنی محنت تے بھروسہ ہوے گا، جتھے اپنی محنت تے ہی بھروسہ ہوے گا، پرالبت تے بھروسہ ہوے گا، اتھے سرت دچ اکاگرتا ہوے گی، جتھے سرت دچ اکاگرتا ہوے گی اتھے وکاراں دا تیاگ ہوے گا، جتھے وکاراں دا تیاگ ہوے گا اتھے بھگتی ہوے گی، اور جتھے بھگتی ہوے گی اتھے گیان ہوے گا، اور جتھے گیان ہوے گا اتھے پرماتما آپ ہوے گا۔